बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और अंदाज़ जहाँ में आज ईरान के पार्लियामानी इंतखाबात के तनाजुर में गुफ्तगु होगी, तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। नाज़रीन, ईरान के नवे पार्लियामानी इंतखाबात में 90% से ज़ायद वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है और तेहरान और चंद दीगर बड़े शहरों में वोटों की गिनती आखिरी इत्तला तक जारी थी और उम्मीद जाहिर की गई थी कि तेहरान के अलावा तमाम इंतखाबी हलकों के नतायज इतवार की रात तक ऐलान कर दिए जाएंगे। जैसा कि आपने खबरों में मुलाहिजा फरमाया, टर्न आउट तकरीबन 65% रहा। यह ऐसी हालत में है कि अमरीका और उसके जेर असर चलने वाले मुख्तलिफ टीवी चैनलों ने यह दावा किया था कि इस बार इलेक्शन में ईरानी आवाम की शिरकत बहुत कम होगी। उन्होंने इसी के साथ ईरानी आवाम से बार बार यह अपील की थी कि इंतखाबात के दिन अपने घरों से न निकलें, हड़ताल कर दें, इंतखाबात का बायकाट कर दें और पोलिंग स्टेशनों की तरफ न जाएं। लेकिन आवाम ने उनकी दरखास्त के बरक्स अमल किया और पोलिंग स्टेशनों पर लोगों का हुजूम इतना ज्यादा रहा कि कई बार पोलिंग के मुयना वक्त में इजाफा करना पड़ा। अमरीकी हुकूमत, सहूनी हलके और मगरबी जराए इबलाग ईरानी आवाम से वोटिंग में हिस्सा न लेने की मुसलसल अपीलें क्यों कर रहे थे? ईरानी आवाम ने उनकी अपीलों को दरखुरे एतना क्यों न समझा? अगर ईरानी आवाम ने मगरब की सिफारिश पर अमल किया होता तो क्या होता? और अब जबकि आवाम ने उनकी ख्वाहिश और उनके मुतालबे के बरक्स अमल किया है और टर्न आउट बेनजीर रहा है, तो इसके नतायज क्या होंगे? इन तमाम बातों का जायजा आज हम लेंगे प्रोग्राम अंदाज जहां में। और इसके लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है सियासी उमूर के माहिर अली शहबाज साहब को, तो उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शहबाज साहब स्टूडियो में
जी,
आपका खैर मकदम है।
शुक्रिया।
सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ईरान में पार्लियामानी इंतखाबात में वोटों की गिनती के ताल्लुक से ताज़ा सूरत हाल क्या है और टर्न आउट कितना बताया गया है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। जैसा कि आपने इशारा किया शराफत साहब, तकरीबन जो है अभी जो मौजूदा जो इत्तलात आई हैं हमारे को, उसके मुताबिक 64.2% टर्न आउट कहा गया है। लेकिन जैसा कि आपने इशारा किया, 90% वोटिंग काउंटिंग हो चुकी है, हो सकता है जो है ये टर्न आउट और ज्यादा हो जाए, लेकिन अलबत्त जो है 65% करीब हो सकता है, वो लगभग 65% और जो है बहुत इंतहाई जो है इसकी बात है कि ये जमहूरी इस्लामी ईरान में या नवे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में गुज़िश्ता अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन 4 साल पहले हुए थे उससे अगर मुखाजा किया जाए तो तकरीबन जो है 13% इजाफा हुआ है वोटर्स में। और जो है जैसा कि आपने इशारा किया था कि अमरीका के बावजूद धमकियों के, अमरीका की अपीलों के, यान जो है मुनाफिक अनासर जो ईरान से बाहर है और खुद इद्दुआ करते हैं, दावा करते हैं कि हम ईरानी हैं और ईरान के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, इनकलाब के खिलाफ जो कार्रवाई वगैरह करते हैं, उनके बावजूद अपीलों के या उनके जो प्रोपोगंडा के बावजूद भी जो है लेकिन निकल आए और लोगों का जो है यही कहना था कि हम जो है हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बका के लिए, और जो सिस्टम हमने इंतखाब किया था 33 साल पहले, जब पहली मरतबा जो ईरान में शाह का तख्ता उलटने के बाद में रेफरेंडम हुआ था और उस जमाने में तकरीबन जो है 90% के ऊपर लोगों ने शिरकत किया और अपनी राय दी थी जमहूरी इस्लामी ईरान के लिए, तो जमहूरी इस्लामी ईरान की बका के लिए और उसकी सलामती के लिए उस सिस्टम को जो है और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आज शिरकत की और अमेरिका के जितने भी जो अपील्स वगैरह थे प्रोपेगंडा सबको नाकाम कर दिया। और जो है खुद तेहरान शहर में कहा जाता है कि जो है इसके पहले तकरीबन कुछ मुखाजा करते हैं 4 साल पहले का 17% वोटर्स में इजाफा, वोटिंग में इजाफा ना कि वोटर्स में, वोटिंग में इजाफा हुए, यानी जो लोग जाकर अपना वोट डाले थे, क्योंकि आपको याद होगा कि 3 साल पहले जो इंतखाबात हुए थे अमेरिका जो है वहां पे कुछ प्रोपोगंडा करके ये बावर करना चाह रहा था कि यहां पे कुछ धांधली हुई है, हालांकि दरअसल हुई नहीं थी धांधली, और लोग आए थे, अमेरिका का ये कहना था कि चूंकि लोग पसंद नहीं करते और लोगों के जो है वोटों में धांधली की गई है लिहाजा इस मतलब वोटर्स में नहीं आएंगे, बॉयकॉट करेंगे उसका, तो सब ये झूठ साबित हुआ। जब भी जो है किसी किस्म की धांधली नहीं थी और आज भी जो है वोट बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। अगर आप इसको मुखासा कर लीजिए किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बल्कि खुद आपके जो वेस्टर्न वर्ल्ड अपने आप को जो है एडवांस कहते हैं, अपने आप को जो है इंडस्ट्रियलाइज नेशंस कहते हैं, उनमें अगर मुकाबला करें तो जो है वहां में बाकायदा शऊर ज्यादा है ईरानियों में, और जो है ईरानियों में जो है क्या कहेंगे फहमे सियासी है, और वो जो है अपने मुल्क की जो है उनके हमदर्दी है, उनके पास हुब्बुल वतनी है, और लोग चाहते हैं कि जो है मुल्क आगे बढ़े, आगे तरक्की करे मुल्क, और जो हर शोबे में जो है मुल्क तरक्की करता जा रहा है, तो ये इंतखाबात में भी इनका शिरकत करना इस बात की दलील है कि लोग जो है आमादा हैं, मुस्तैद हैं अमेरिका का हर किस्म से मुकाबला करने के लिए, और अमेरिका के धमकियों से जो है ईरानी कौम कभी नहीं डरेगी, ना पीछे हटेगी, ना अपने हकूकों को जो है हाथ से खोगी, बल्कि मुस्तमम इरादा कर चुके हैं कि इस किस्म के इंतखाबात में ये लोग जो है अपना दरख्शां जो मुस्तकबिल उन्होंने इंतखाब किया है उसको हर मौके पर बताएंगे। अब देखिए गुज़िश्त आइंदा साल रियासत जमहूर के यानी सदर के लिए सदारत के लिए भी, तो अगर उमूमन जो है सदारती इंतखाबात से अगर मुखासा किया जाए तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन लोगों की कमी हुआ करते थे इतने 9 दौरों में, चूंकि इसके पहले जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन हुए थे सदारती इंतखाबात 3 साल पहले 84% शिरकत किए थे, लेकिन 1 साल पहले यानी 4 साल पहले जो 8वां दौरा हुआ था पार्लियामेंट्री इलेक्शन का उसमें 51% था उनका, और उससे पहले 67 था। बहरहाल जो है ये उमूमन जो है सदारती इंतखाब से मुखासा किया गया तो इसमें लोगों की तादाद जरा कुछ कमी हुआ करती है, लेकिन उसके बावजूद भी 65% के यानी 65% के करीब लोगों का जो है शिरकत करना इस बात की दलील है कि लोग जो है आमादा हैं, और लोग किसी किस्म का बाहर का असर है ही नहीं, और लोग जो है अपना जो रास्ता इंतखाब किए कर चुके हैं उस पर गामजन है और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलते हैं लंदन स्टूडियो जहां इस वक्त बरसग़ीर के मुमताज दानिश्वर डॉक्टर इनायतुल्लाह अंदराबी साहब मौजूद हैं। अंदराबी साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
अंदराबी साहब, ईरान के पार्लियामानी इलेक्शन के ताल्लुक से मगरिब में क्या तासुर पाया जा रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मगरिब की जब आप बात करें तो यहाँ एक ऑफिशियल एक नैरेटिव है, एक ऑफिशियल एक लाइन मुकर्रर की गई है ईरान के ताल्लुक से, जिसमें ये है कि ईरान को ये बिल्कुल एक बहुत ही एक ऐसा मुल्क बावर कराते हैं जहाँ पे लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म जबर और आज़ादियों की नफी और ये सारा कुछ, यानी बहुत ही एक अनसिविलाइज्ड एक गैर महजब एक रियासत जहाँ पे बस मजहबी लोगों का राज है, ये यहाँ का ऑफिशियल नैरेटिव है। ये यहाँ का एक हुकूमतों और हुकूमती हलकों का बनाया हुआ एक ईरान के मुतल्लिक सियासी जो है एक डिस्कोर्स है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ के जो दानिश्वर हलके हैं और दूसरे इंडिपेंडेंट हलके हैं वो इसके साथ एग्री करें। अब देखिए इंतखाबात की तरफ हम आते हैं, लेकिन अब देखिए अभी एक अहम एक सिग्निफिकेंट वाक़ा हुआ कि ये जो अमेरिका में ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं जो काफ़ी अब पुराने हैं, बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं दुनिया में कि फिल्म साजी की जो सन्नत है और फिल्म साजी का जो आर्ट है उसमें वो एक बहुत बड़ी एक बॉडी एक इदारा समझा जाता है कि जिसके अवार्ड्स को काफ़ी क्रेडिबिलिटी है दुनिया में। अब वहाँ फॉरेन फिल्म का जब अवार्ड देना था तो पहला अवार्ड एक ईरानी फिल्म को मिला, ए सेपरेशन जिसका नाम था, तो वो जो ईरान उस फिल्म का डायरेक्टर था तो उसने उस अवार्ड को रिसीव करने के वक्त भी यही कहा कि देखिए एक तरफ तो आपको दिखाया जा रहा है कि ईरान बहुत ही मजहबी लोगों के हाथों में और वहाँ कुछ न आज़ादियाँ न कुछ, और यहाँ से आप देखते हैं कि ये बेस्ट फिल्म जो है वो ईरान की वहाँ पे जज हुई है, तो इससे उस तस्वर में जो यहाँ पे حکومتی حلقے بناتے ہیں اس میں بہت زیادہ اس میں ڈینٹ آ گیا ہے، یعنی اس پر وہ متاثر ہوا حکومتی حلقوں کا جو تاثر ہے. تو اسی لیے حکومتی حلقوں کا تاثر جو ہے وہ ایران کے بارے میں تو یہی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ انتخابات جو ہوئے تو ان کا زیادہ اس کی طرف سٹرس رہا ہے کہ احمدی نجات کے کتنے لوگ ہیں، خامنی صاحب کے کتنے لوگ ہیں، اور کیا ہارڈ لائنرز نے جیتا، کیا اصلاح پسندوں نے جیتا، ان کا یہ مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ بھی دانشور حضرات اور دیگر معتبر حلقے اس بات سے بہت ہی امپریسڈ ہیں کہ ایران کا جو ٹرن آؤٹ ہے، یعنی 65% لوگ جو ووٹ دینے آئے، اس کے اندر ایک پیغام ہے، ایک واضح پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ وہ الیکشن کو ایک بامانی ایک چیز سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کوئی ڈھکوسلا، کوئی ڈھونگ، کوئی رچایا ہوا ڈراما نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بامانی چیز ہے. ہم جائیں گے اور لوگوں کو اس میں الیکٹ کریں گے. یہ لوگوں کا بھروسہ ہے سسٹم پر، یہ لوگوں کا ٹرسٹ دکھا رہا ہے، اور مغرب نے یہ میسج اچھی طرح سن لی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ پچھلی بار جو برطانیہ میں انتخابات ہوئے اس میں ٹرن آؤٹ کچھ 42 یا 43% تھا، یعنی 50% کو تو یہاں ٹچ نہیں کرتا ہے ٹرن آؤٹ یہاں کے ممالک میں، لیکن وہاں 65% ہونا، اور وہ بھی مجلس کے انتخابات میں. جہاں کی ابھی میں ایک اپنے ایرانی دوست سے بات کر رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ نے وہ ڈالا، تو اس نے کہا نہیں یہ بہت مشکل ہے، کچھ 290 سیٹس یا کچھ ہے وہاں مجلس میں، اور اس پر 3000 سے کچھ زائد امیدوار ہیں، تو اب وہ امیدواروں کو دیکھنا اور دیکھنا کہ میرے شہر میں کون سا امیدوار ہے اور پھر اپنے شہر کا وہ اسٹیبلش کرنا. اس نے کہا اس میں کافی پروسیجر ہے، اس لیے میں ووٹ نہیں ڈال سکا، البتہ پریزیڈنشل ووٹ تو میں ضرور ڈالتا ہوں. تو اب پریزیڈنشل الیکشن میں اس سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی 65% ٹرن آؤٹ ہوا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ امیدواروں کی تعداد بھی کتنی تھی، یعنی جہاں پہ الیکشنز کی کوئی کریڈبلٹی نہیں ہوتی، جہاں پہ انتخابات میں لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہاں پہ امیدوار بھی اتنے کھڑے نہیں ہوتے جتنے آج کھڑے ہوئے تھے. اور پھر لوگوں کا ٹرن آؤٹ تو اس میں ایک واضح میسیج تھی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میسیج مغربی دنیا نے اور یہاں کے تمام حلقوں نے اچھی طرح سے سن لی ہے.
بہت بہت شکریہ اندرابی صاحب. اور ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار قمر آغا صاحب موجود ہیں. قمر آغا صاحب السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
قمر آغا صاحب ایران کے پارلمانی الیکشن کے تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے، ٹرن آؤٹ مغربی دعووں کے برعکس تقریباً 65% رہا ہے، ابھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے، اور مغربی ذرائع ابلاغ کا دعویٰ یہ تھا کہ اس بار الیکشن میں ایرانی عوام کی شرکت بہت کم رہے گی، اور اسی کے ساتھ امریکہ نے دھمکیاں بھی دی تھی ایرانی عوام سے، یہ اپیل بھی کی تھی کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں، بائیکاٹ کر دیں، ہڑتال کر دیں، ووٹ دینے کے لیے نہ آئیں، اور امریکہ کے زیر اثر چلنے والے ٹی وی چینلوں نے بھی اپنی پوری توجہ جو ان کے فارسی زبان کے جو چینلز ہیں مرکوز کر رکھی تھی اس بات پر کہ عوام کو ہر حال میں پولنگ میں حصہ لینے سے روکا جائے. لیکن اس کے باوجود جیسا کہ آپ نے ملاحظہ سنا گفتگو میں کہ ٹرن آؤٹ تقریباً 65% رہا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کی عوام اس کی امپورٹنس کو، خاص طور سے جو الیکشنز ہوتے ہیں ووٹنگ کی جو امپورٹنس ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. انہیں ایک بہت بڑی قربانی کے بعد ان کو یہ حق حاصل ہوا ہے، اور اس میں بے گناہ بہت ہزاروں لوگ مارے گئے تھے. میں ذکر کر رہا ہوں رضا شاہ پہلوی کا اور اس سے پہلے کا جو دور گزرا ہے. ایرانین تقریباً 100 سال سے یہ لڑائی لڑ رہا تھا، یہ پچھلی صدی شروع جب ہوئی تھی اسی وقت سے اس نے پہلے کانسٹیٹیوشنل ریفارم کی لڑائی لڑی، پھر ارلی ففٹیز میں اس نے کافی حد تک اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا تھا جب جبیہ ملی نے اپنی حکومت بنائی الیکشن کے ذریعے. वहाँ पे नाकामयाबी मिली अमेरिका की वजह से, कू हुआ और उसमें दोबारा से शाह को वहाँ पे बिठाला गया। तो 79 में जब इस्लामिक रिपब्लिक बनी तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाब था, जिसमें जनता ने जिस तरीके से वहाँ के आवाम ने कुर्बानियाँ दी और उसके बाद यह मैं वो इस जो वोट है उसकी वैल्यू जितना ईरानियन जानता है या वहाँ की आम जनता जानती है, इतना मैं समझता हूँ कोई दूसरे लोग नहीं जानते। और यही वजह है एक इतनी बड़ी टर्न आउट होने का। दूसरी वजह यह भी है, एक बहुत अच्छी बात यह हुई कि जो हमेशा के लिए तय हो गया कि वहाँ के उलमा हजरात ने यह तय किया रिवॉल्यूशन के बाद कि वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप इस्टेब्लिश करेंगे अपने देश में। यानी एक जो सबसे बड़ी बात हुई आलम इस्लाम में, जो पहली बार ये हुआ, उसमें ये हुआ कि जो जमहूरियत और इस्लाम, इसकी तकरार नहीं है बल्कि ये कंपैटिबल हैं एक दूसरे के। मैं समझता हूँ ये जो स्टेप उठाया गया था उस वक्त आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी साहब ने, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। पूरे ये महदूद नहीं रह जाता सिर्फ ईरान में बल्कि आलमी इस्लाम को देखा जाए तो उसके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत डिबेट है जो इस्लामिक देशों में चल रही है पिछले मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 100-150 साल से, जिसमें हमेशा ये कहा गया है कि इस्लाम और डेमोक्रेसी साथ साथ नहीं चल सकती, ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जमहूर इस्लाम ईरान ने ये डिबेट में एक बड़ा कदम उठाया, ये कहा कि मुल्क जो होगा वो इस्लामिक डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी डेमोक्रेसी ज़रूर होगी मगर हमारी डेमोक्रेसी वेस्टर्न मॉडल की नहीं होगी। और ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है ईरान के उलमास का, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। बहुत से लोगों का कहना यह है कि टर्नआउट ज़्यादा होने की एक वजह सहूनी हलकों और अमरीकियों की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा न लेने के लिए जो ईरानी आवाम को रोकने की जो कोशिश की जा रही थी उसका भी असर हुआ है कि ईरानी आवाम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर अमरीकी और सहूनी हलके ये चाहते हैं कि आवाम इलेक्शन में हिस्सा न लें तो यकीनन इसमें अमरीकी और सहूनी हलकों का फायदा है और ईरान का नुकसान है।
ये बात जो है कह तो सकते हैं आप, लेकिन जो है ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ईरान ही जो है, जैसा कि हमारे गुफ्तगू में दूसरे शुरुआत में भी जो है कहा है इसको, ईरानी आवाम में जो है फहम सियासी है, शऊर है। जैसा कि हमने गुफ्तगू के आगाज में इशारा किया था, आज से 33 साल पहले जब रेफरेंडम हुआ उस जमाने 90% आदमी जो है शिरकत किए यहाँ पे, आवाम का 90% हिस्सा शिरकत किया, तो लिहाजा जो है उससे देखते आइए जंग के दौरान में भी जब जंग ज्यादा शुरू हुई थी
इंतखाबात
होते रहे और उस जमाने में जो है बनी सदर का इंजरान से फरार होना, जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, खयानत करना उनका और फरार होना, उसके बाद में फौरी 1 साल बाद इंतखाबात होना और आयतुल्लाह खामेनेई का उस इंतखाबात में जो है बहुत भारी अक्सरियत के साथ सदर होना और उसमें लोगों का जो है बावजूद गिरते हुए मिसाइल्स में गिरते हुए बॉम्ब से जो है शिरकत करना, इस बात की दलील है कि जैसे ईरानी अवाम जो है कभी अपना जो हक जो हासिल किए हैं इतनी जिद्दोजहद के बाद कभी हाथ से जाने नहीं देंगे। और रहा उनका प्रोपेगंडा अपनी जगह है, वो तो कहेंगे, वो उनका प्रोपेगंडा जारी है, वो हमेशा ये उनकी उम्मीद है, उनकी आरजू है कि ईरानी जो है बैलेट बॉक्स जो है खाली रहें, अवाम शिरकत ना करें। वो बताना ये चाहते हैं कि अगर ईरान के अवाम अगर शिरकत नहीं करेंगे तो इस बात की दलील है कि यहाँ की जो हुकूमत है उसकी मशरूयत जेर सवाल रहेगी, उसका कानूनी होना या उसका लेजिटिमेसी उसकी जो है जेर सवाल होगी। लेकिन ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा बेवकूफाना प्रोपेगंडा है उनका और आज तक इसमें जो है वो कभी कामयाब नहीं हुए, और ये पहली मरतबा नहीं है, वो तो जो है करते ही रहेंगे, उनसे तवक्को भी नहीं है हमारे को और ना उसका असर जो है ईरानी आवाम पे होने वाला है। अब हो सकता है कि उस तबकात जो है आए होंगे उसके मुकाबले में वो कहे होंगे बाहर, चूंकि वहां से जो है तबलीगत हो रहे हैं, मनफी तबलीगत हो रहे हैं, लिहाजा हम अपना फर्ज समझते हैं, शिरकत करेंगे वोट डालेंगे, लेकिन अगर उनके तबलीगत ना भी हों तो ईरानी आवाम आएंगे, आते रहे हैं वो आते रहेंगे। आप देखिए ना सिर्फ जो है मुसलमान बल्कि ईरान के जो अकलियतें हैं यहाँ पे, जैसा कि अर्मनी है, जैसे कि क्रिश्चियन है, इसको ईसाई या मसीह कहा जाता है यहाँ पे, या जरतुश्ती है, या हत्ता के यहूदी है, हत्ता के हमारे मुसलमानों में बिरादरान अहल सुन्नत हैं, उनके खुद अपने नुमाइंदे हैं, उनके पास शाहजान वगैरह में या मसलन कुर्दिस्तान के इलाकों में या तुर्कमन सहरा में कहा जाता है कि महाबाद में जो बहुत अच्छी खासी वोटिंग हुई, वहां पे तो बर्फ गिर रही थी उस दिन, अरे बहुत तेजी के साथ शिद्दत के साथ बर्फबारी हो रही थी, क्योंकि अहल सुन्नत का इलाका है वहां पे, अक्सरियत उन्हीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कसरत से इंतखाबात में शिरकत की, और जो है इस किस्म के प्रोपोगंडे उन पर कोई असरअंदाज होने वाले नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि समझते हैं कि मुल्क की यकजहती हमारा जो है फर्ज है, इसकी यकजहती को कायम रखना, बरकरार रखना, और हर हालत में हर उसमें जो है इसको आगे लेके चलना, और कभी भी जो है आपस में तफरका नहीं पड़ना, वरना ना सिर्फ गर्व बल्कि जो है मगरबी, ना सिर्फ मगरबी ताकतें बल्कि मगरबी ताकतों के अरब पिट्ठू हैं, जैसे कि सऊदी अरब हैं और दूसरे ममालिक, इन्होंने भी जो है भरपूर कोशिश की है और बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा किया है ताकि कुछ यहाँ पे ताइफी तौर फिरकावाराना तौर पर कुछ यहाँ मसला उठाए, आपस में तफरका डाले, आपस में जो, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और नहीं होंगे कामयाब हो। तो इस बात की दलील है कि जो है प्रोपोगंडा उनका अपनी जगह पे वो कहते रहेंगे, लेकिन आवाम जो है कभी उनके प्रोपोगंडे को कभी तवज्जो में नहीं लाएंगी, खातिर खा जो है तो तवज्जो नहीं करेंगी, शिरकत बराबर करती रहेंगी और अपने हक हकूक के लिए जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें और एक अहम चीज़ जो है इस इंतखाबात में ये बात की दलील थी कि अमरीका का सबसे बड़ा जो है, देखिए आए दिन ओबामा के धमकियाँ बढ़ते जा रहे हैं जंग वारा के बारे में, वो कह रहे हैं कि जो है ईरान पे हमला खा के, उनको कोई जवाब ही नहीं है अमेरिका को ईरान पे हमला करने का, लेकिन इसराइल का प्रोपोगंडा भी है और खुद जो है ओबामा का भी प्रोपोगंडा है, वो धमकी देते जा रहे हैं कि हम जो है ईरान पे, हमारा लास्ट ऑप्शन ये रहेगा कि ईरान पे हमला करेंगे। अगर वाकई ईरान के अवाम अगर बुजदिल होते, डरपुक होते या हिम्मत हार जाते, तो कम अज कम इस प्रोपोगंडे को सुनकर वो इंतखाबात में नहीं आते और ये कहना चाहते कि हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लिहाजा हुकूमत हमारी पसंद की नहीं है, ये अमरीका के मफाद में होता है। लेकिन इसके बावजूद आना इस बात की दलील है कि अमरीका जो है कुछ कहीं कर ही नहीं सकता, क्योंकि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस जमान में कहा था कि अमरीका जो है कोई गलती ईरान के खिलाफ नहीं कर सकता, और बहुत बड़ी चीज़ है इसको जो है वाकई जो आम की जो शिरकत है, जैसा कि ईरानी जबान में, फारसी जबान में, फारसी इस्तेलाह में उसको हुकूमत मर्दुम सालारी कहते हैं, अवाम की हुकूमत, चूंकि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को लफ्ज डेमोक्रेसी पसंद नहीं था, कहते थे कि बिल्कुल गर्वी लफ्ज है ये, इस्लाम में जो हक हकूक जो है इंसानों को या मुसलमानों को हासिल है वो डेमोक्रेसी में नहीं है, डेमोक्रेसी बिल्कुल महदूद कलमा है, ये पुरानी ग्रीक वगैरह की इस्तेलाह है, बाद में वेस्टर्न कंट्री तरफ जो है प्रमोट हुआ है और थर्ड वर्ल्ड कंट्री से नाफिज किया गया है, और इसमें हर किस्म के जो है बदनवानियां भी होती हैं डेमोक्रेसी के तहत, लेकिन इमाम खुमैनी ने जो है सरीहन सराहतन जो है इसको इनकार किया था कि इस्लामिक रिपब्लिक कहा जाए इसको, ना कि इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि कलमे इस्लाम, लफ्ज इस्लाम ऐसा जो है वसी तरीन कलमा है, तमाम हकूकों, तमाम आज़ादी जो है यहीं पर आ जाती है, तो लिहाजा जो है ये वेस्टर्न जो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है उससे कहीं बढ़कर है। अब देखिए इसके पहले शायद मैं गुफ्तगू में कहा था, चारशंबे की जो गुफ्तगू हुई थी हमारी, कि हिंदू ईरान में जो हक हकूक अकलियतों का हासिल है वो मगरबी ममालिक में नहीं है, मिसाल के तौर पे देख लीजिएगा आपके जर्मनी में हो या मसलन बरतानिया में हो या खुद अमेरिका में हो, आज जो है सुना कहा जाता है कि आज रात आईपैक की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है एनुअल, उसको जो है ओबामा खिताब करेंगे। आईपैक क्या है? अमेरिकन ईरानियन, सॉरी अमेरिकन इसराइली एसोसिएशन है वो, और जो लॉबी है जिसका जो है काफी गहरा असर और अमेरिका के ऊपर है। अब यहाँ सवाल ये उठता है, अगर जो है अमेरिका में यहूदियों की तादाद अगर फर्ज कीजिए मान ली जाए कि 6 मिलियन है, 6 मिलियन यहूदियों का इतने हकूक हासिल है, इतना असर और नफूज है कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उनके ताबे हैं, उनकी बात सुनती है, आया अमेरिका में रहने वाले वो 10 मिलियन जो मुसलमान हैं उनका कोई हक हिस्सा नहीं है इस जमहूरियत में? आया डेमोक्रेसी के माने यही होते हैं कि मसलन एक फिरके को दिया जाए, उनके ताबे रहा जाए, और जो है मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद जबकि 10 मिलियन से पहुंच चुकी है उससे बढ़ के ना उनका कोई एसोसिएशन हो, ना उनकी बात को मानी जाए बल्कि उनके खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो बताइए आप कहां पे जो है कौन सी डेमोक्रेसी या कौन सा मसलन जमहूरी निज़ाम ज्यादा जो है आज़ादी देता है, ज्यादा हक हकूक देता है मर्दों को, आवाम को, या अमेरिका का निज़ाम या जमहूरी इस्लाम ईरान का निज़ाम जहां पे जो है मसीहों के इस्लाम के अपने नुमाइंदे हैं और बाकायदा जो है इंतखाबात में शिरकत करते हैं, मुंतखब होते हैं, मजलिस के शुरा इस्लामी के जो मेंबर बनते हैं और अपनी कौम के जितने उम्र है उम्र को जो है यकसुई करते हैं, उसकी उम्र को हल्लो फसल करते हैं, यहूदियों को भी ये हक है ईरान में रहने वाले, तो बताइए इसका मतलब यह है कि जो फहम सियासी, जो शऊर, जो ईरानी आवाम نظام میں ہے وہ فہم سیاسی شعور جو ہے نہ صرف جو ہے امریکہ کے عوام بلکہ امریکہ کی حکومت میں نہیں ہے. اس لیے امریکہ کی حکومت آج تک اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکی ہے اور منفی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے, کر کے یہ سمجھتی ہے کہ اس منفی پروپیگنڈا کے ذریعے سے ہم ایرانیوں کو بدزن کر دیں گے اور ان کو بیلٹ باکسز سے پولنگ اسٹیشن سے دور رکھیں گے. لیکن اس کا اثر جو ہے بالکل برعکس ہوتے جا رہا ہے اور ایرانی جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اندرابی صاحب, جناب انتخابات پولنگ سے پہلے
جی
مغربی ذرائع ابلاغ, امریکی حکام اور صہیونی حلقے ایرانی عوام سے انتخابات میں حصہ نہ لینے کی اپیلیں کیوں کر رہے تھے؟
دیکھیے وہ اصل میں جس چیز کو پرسو کر رہے ہیں, جس چیز کی تلاش میں ہیں اور جس چیز کے لیے وہ پیسے اور سارا کچھ صرف کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ایک خلیج پیدا ہو عوام اور حکومت کے درمیان. یہ اصل جو ایران کو مغلوب کرنے اور ایران کو کنٹرول کرنے کا جو مغربی منصوبہ پچھلے 33 سال سے جاری ہے اور جو ابھی تک ناکام ہے, تو اس میں کئی آپشنز یہ دیکھ رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ براہ راست جنگ کی جائے, یعنی فوجیں داخل کی جائے, وہ بھی ممکن نہیں. تو کئی آپشنز ہیں, تو اس میں یہ ایک بہت ہی پریفرڈ آپشن, یعنی اس پہ کافی لوگ اس پہ متفق ہیں کہ یہی کیا جانا چاہیے کہ وہاں عوام اور اس نظام کے درمیان, اس سٹیٹ کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جائے. تو لیکن یہ الیکشن جو ہیں انہوں نے اس کے اپوزٹ ابھی انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا, لیکن ساری کوشش یہ ہے کہ یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں, اکنامک سینکشنز جو لگ رہی ہیں, وہ آپ دیکھیں اس سے بھی کیا ہوتا ہے, اس سے عام انسان کو تکلیف ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی چاول یا گندم کچھ امپورٹ کرنا چاہے تو اس کو پرابلمز ہوں گی, اس سے کہ سینٹرل بینک پہ پابندیاں ہیں, تو اس سے عام انسان ذرا اس کو پابندیاں اس کو یعنی اس کی پرابلمز ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ سسٹم کے خلاف ہو جاتا ہے. یہی عام طور پر ہے اور یہی یہاں کی کیلکولیشن ہے کہ ہم جتنا یہ کریں گے لوگ نظام کے خلاف ان کے اندر ایک رجحان پیدا ہوگا, وہ نظام کے خلاف اٹھیں گے. لیکن اسی لیے انہوں نے یہ اپیل بھی کی تھی کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لیں اور ووٹ نہ ڈالیں, اس سے کہ وہ لوگوں کو اس پر سے اعتماد اٹھانا چاہتے تھے کہ ان کو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. لیکن بہرحال جو ہوا وہ دیکھا آپ نے, اور یہ ابھی بیک فائر ہوا ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ایرانی عوام نے اپنے سیاسی شعور کے مطابق ووٹ ڈالے ہیں, لیکن یہ جو مغرب کی اپیل تھی اس نے بھی اپنا کام کیا, اس نے یعنی یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہی, یہ ان کے لیے جو ہے اس کے مخالف نتائج مغرب کے لیے برآمد ہوئے. تو لہذا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بیسیکلی عوام اور نظام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی جو کوشش ہے یہ اسی کا حصہ ہے.
جی بہت بہت شکریہ. جی قمر آغا صاحب, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟
دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کسی بھی اسلامک دیش میں جمہوریت نہیں چاہتا, اور ایران تو ایک بہت ہی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ کنٹری ہے جو ویسٹ کے لیے گیٹ وے ہے, سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا دونوں کا, تو ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اگر غور طلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے جب بھی وہ پورا شاہ کے پیریڈ میں کولڈ وار تک جب چل رہی تھی اس میں وہ ایران کے ہی ذریعے ویسٹ ایشیا کو کنٹرول کرتا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران میں بہت بڑا تیل کا اور اس کے ساتھ ساتھ نیچرل گیس کا ذخیرہ پایا جاتا ہے, تو جو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. अमेरिका के लिए बेहतरी, अमेरिका का मानना यह है कि बेहतरी इसी में रहती है कि वहाँ पे अगर तानाशाही हो, एक आदमी से डील करना बहुत उसके लिए आसान होता है। अगर जमहूरियत होगी तो उसको, उसमें पार्लियामेंट भी होगी, उसके अंदर प्रेसिडेंट भी होगा, उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी भी होगी, उसके अंदर बहुत से गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होंगे जिससे डील करना उसके लिए मुश्किल होगा। तो वो इन सब चीज़ों को चलते हुए हमेशा कोशिश उसकी ये रहती है, जब से इनकलाब ईरान में आया है उसकी हमेशा कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से वहाँ से इस हुकूमत को हटाया जाए और दोबारा से वहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल की जाए, ताकि वो अपना गेम जो है सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में जो करना चाहते हैं वो करें। दूसरी बात ये भी है, गौरतलब ये है कि ईरान की जो आम आवाम है वो भी इस वक्त इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है, और वो उनके जितने भी गेम्स थे, जितने भी उनके की पॉलिसीज़ थी, उसको वो महज ईरान में ही नहीं बल्कि पूरे उस खित्ते में अपोज कर रहे हैं, पूरे उस पूरे रीजन में अपोज कर रहे हैं और एक नया ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत खालिश है। अभी हाल में ही जो उसका इम्पैक्ट पड़ा, हम सभी जानते हैं, रेवोल्यूशन, ये इस्लामिक रेवोल्यूशन के फौरन बाद ही तमाम इस्लामिक हुकूमतों में स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशंस होने लगे थे, मुसलमान पहली दफ़े सड़कों पे आ गया था और उसने अमेरिका की जो साजिश थी उसको भी समझ लिया था। फिर उसके बाद लगातार तब से लड़ाई चल रही है, अब एक नई इस्लामिक अवेकनिंग का दौर शुरू हुआ है। तो उनके लिए तो ईरान बहुत, वो समझते हैं कि यहाँ पे जितना भी हो रहा है वो अमेरिका को बहुत कमज़ोर कर रहा है इस पूरे खत्ते में। तो इसलिए वो हमेशा, उनकी पहली भी कोशिश ये थी, इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन था, बुश एडमिनिस्ट्रेशन, उसने तो कहा था कि इराक के बाद वो ईरान की हुकूमत बदलेगा। उस अमेरिका में जो पॉलिसी बनती है उसमें कोई जल्दी से चेंज नहीं आता, प्रेसिडेंट ज़रूर बदलते रहते हैं, पॉलिसी वही रहती है, तो उनकी पूरी कोशिश है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका के पास सिर्फ एक ही चीज़ रहती है हर बार चेंज करने के लिए, कि हुकूमत चेंज करो। पहली उसकी जो टैक्टिक्स थी कोल्ड वॉर में वो थी सैंक्शंस लगा के वो रिजीम को क्रिपल करता था। फिर उसके बाद अब बुश एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद से ये पॉलिसी है कि सैंक्शंस से महज चेंज नहीं आ सकता, वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हुकूमत बदलनी बहुत ज़रूरी है। तो वो कोशिश कर रहे हैं, उनका इसराइल बहुत पावरफुल एलाई है रीजन में, उसकी मदद वो ले रहे हैं, उसकी मदद के साथ चाहते हैं कि किसी भी सूरत से वहाँ पे। और दूसरे वो अपने जो जब भी उनके यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आती है या जब भी उनके यहाँ किसी कोई बड़ी दुश्वारियाँ आती हैं, तो वो हमेशा कोशिश उनकी ये होती है कि किसी दुनिया के किसी खित्ते में जंग करें, और जंग करके वो सारी अपनी जो परेशानियाँ या जो इकोनॉमिक क्राइसिस होती है उसको वो डाइवर्ट कर देते हैं। ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा तेल का ज़खीरा भी है, यहाँ से उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत हो सकता है, अपने वीपन की भी वो टेस्टिंग करते हैं। तो ये सब देखते हुए उनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से इस रिजीम को वहाँ से हटाया जाए और एक वहाँ पे एक ऐसी पपेट रिजीम दोबारा से बनाया जाए। इसको वो छिपाते भी नहीं, उनकी आप सेनेट हियरिंग्स अगर आप देखें तो उसमें भी बराबर ये बातें होती रहती हैं। फिर उसके अलावा उनके अखबार भी रोज़ाना लिख रहे हैं, उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसराइल सबकी बातें कर रहा है वॉर करने के लिए। लेकिन हालात वक्त बदल रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो अपने इस गेम में अब कामयाब हो पाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब जी। ईरान में जब से जी इस्लामी इनकलाब आया है,
सही,
उस वक्त से अब तक 30 इंतखाबात हो चुके हैं, और हर इलेक्शन से पहले
जी
अमेरिका ने इंतखाबात को नाकाम बनाने की
कोशिश की है जी।
और मुसलसल वो नाकाम होता रहा, लेकिन एक बहरहाल कोशिश उसकी जारी रही है। मुसलसल नाकामियों का सामना करने के बाद भी इस ताल्लुक से अमेरिका की मुआनेदाना पॉलिसियां जारी रहने की वजह क्या है
जी? जैसे अर्ज किया था कि गुफ्तगू में कि अमेरिका जो हकीकत भी नहीं है, अमेरिका हकीकत को देखना नहीं चाहता। और अमेरिका में अगर शराफ़ता गौर करें आप, जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, खाओ रिपब्लिकन हो खाओ जो है डेमोक्रेट हो, जो भी जो रेजिम जो है व्हाइट हाउस में आती रहती हैं बदलती रहती हैं, इनमें जो है बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है इनमें। यानी क्या कहेंगे आप, इन्हें जहनी तौर पे इनका दिवालिया निकल चुका है, و شکست کے ذہنی طور پر ودیالے نکل چکا ہے. یہ لوگ جو ہیں اتنے بالکل حقیقت کو پہچان ہی نہیں سکتے. اگر امریکہ حقیقت کو پہچان سکتا ہوتا, پہچان لیتا ہوتا, تو امریکہ کا وقار, امریکہ کا جو دبدبہ تھا وہ اتنا جو ہے خراب نہیں ہوتا, اتنا نیچے نہیں آتا, اتنا پامال نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے کولڈ وار میں, وہ زمانے میں جب رشیا سوویت یونین تھا, آپس میں جو رسہ کشی چلتی تھی ان کی, وہ زمانے میں امریکہ کے ہاتھ میں میڈیا تھا اور ایک سوویت یونین بالکل بند سوسائٹی مانی جاتی تھی دنیا میں. دنیا کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ جو ہے فریڈم کے لیے ہے, آزادی کے لیے ہے, حقوق مشورہ کے لیے ہے. لیکن یہ سو سیاست کی چیز تھی, ایک چال تھی, ایک جو ہے ترغیب تھی. اس میں شک نہیں کہ امریکہ جو انڈسٹری طور پہ کافی ترقی کر چکا, اس میں شک نہیں کہ زمانے میں امریکہ میں آزادی تھی ضرور, لیکن اس کے بعد میں دیکھا جائے تو دیکھیں امریکہ جو ہے بالکل ایک پولیس سٹیٹ میں تبدیل ہو چکا ہے. حتیٰ کہ امریکی عوام کو بھی جو ہے اتنی آزادی اور حق و حقوق نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے. نکسن کے زمانے میں جو ہے واٹر گیٹ اسکینڈل ہوا, جو ٹیلی فون وغیرہ کے جو کنٹرول وغیرہ کرنے لگے اپوزیشن وغیرہ کا, خود اپنے جو ہے کیبنٹ کے افراد وغیرہ کا, پھر اس کے اندر بڑھتے گیا. آج کل جو ہے امریکہ کے جو عام معمولی جو آرڈنری جو سٹیزن ہیں, عوام ہیں, ان کو بھی جو ہے کچھ سول لبرٹیز جو کہتے ہیں آپ, مدنی حقوق, وہ بھی ان کو جو ہے برابر جو ہے ان کے نہیں ہیں. ان کے اگر ایسا نہ ہوتا تو جو ہے یہ وال اسٹریٹ آکوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہاں پیدا نہیں ہوتا. وہاں کے لوگ جو ہے سڑکوں پہ آتے نہیں. والے لوئر نے کہتے کہ 1% کی حکومت 99% پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے امریکن ایڈمنسٹریشن یا پالیسی میکر, اب آپ دیکھیے جو بھی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس وغیرہ ہیں, ایک مخصوص حلقہ ہے, انہیں کے اطراف انہیں کے دور میں جو ہے یہ ریوالو ہوتے رہتا ہے. یعنی مثلاً ایک گیند ہے جو پھراتے رہتے ہیں آپس میں, خواہ ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت سے جو ریالٹیز ہے اس سے بالکل جو ہے یہ لوگ کٹ آف ہو چکے ہیں. ان کے سمجھ میں کچھ نہیں, تو غرور ہے, تکبر ہے. اگر دراصل جو ہے ہر ایک سامراجی نظام کا یہ سرنوشت ہوتی ہے, اس کے بعد میں زوال شروع ہوتا ہے. بلکہ زوال شروع ہو چکا ہے امریکہ کا, زوال شروع ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے ان کے سر پیروں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے اور ان کی سلطنت وغیرہ خراب ہوتی ہے. اب دیکھ ایسے حقیقت بین ہوتے ہی ہے تو جو ہے پہلے تو جو ہے یہاں کے جو منطقے میں مداخلت نہیں کرتے. ایران تو کہہ چکا ہے کہ امریکہ کی ہم بالکل عزت کرتے ہیں, وقار کرتے ہیں, امریکہ کے آبرو جی ہیں, امریکہ کی عزت کرتے ہیں. امریکہ کو چاہیے کہ اپنے جو ہے باؤنڈریز ہیں وہاں پہ رہیں. امریکہ ضرور بہت بڑا پاور ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہی نہیں کہ جو امریکہ کا دباؤ ہمارے پہ ہو سکتا. ہم تعلقات رکھنے کے, اب ایران جو ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ تعلقات نہیں رکھیں گے, تعلقات رکھنے پہ آمادہ ہیں, لیکن برابر کے تعلقات, برابری کی بنیاد پہ. ایسے تعلقات نہیں کہ آقا اور جو ہے غلام ہیں, بلکہ برابری کی تعلق. لیکن امریکہ کو چونکہ جو ہے نشہ غرور اتنا غالب ہو چکا ہے ان پہ, اور خاص طور پہ دیکھیے عرب ممالک بالکل پٹھو ہیں ان کے, باوجود تیل کی دولت کے وہ بالکل غلامانہ طور پر امریکہ کے حضور میں, امریکہ کی خدمت میں رہتے ہیں. تو امریکہ جو ہے چاہتا ہے کہ اس کا اثر ایران کا آپس کے اطراف کے جو ممالک ہیں ان پہ نہ ہو. اب آپ دیکھیے اس انتخابات میں مصر کے جو عوام تھے بہت گہری نظر رکھتے تھے. مصر کے رپورٹر دوارہ بھی آئے تھے مصر کے, کیونکہ ابھی ایک سال ہوا ہے مصر میں مبارک کا تختہ الٹ کر, اور وہاں کے عوام جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ حق و حقوق حاصل کریں جو ایرانیاں حاصل کر چکے تھے, اور ان کو وہ چاہتے ہیں کہ بالکل اسلام کی بنیاد پر وہاں پہ بھی جو آزادانہ طور پہ انتخابات ہو, اور عوام کے جو جذبے ہیں, عوام کے جو ارمان ہیں, جو عوام کی جو آرزو ہے اس کے مطابق حکومت تشکیل ہو. اور رہا کہ رپورٹرز یہاں پہ انٹرویو بھی دے چکے ہیں, عراق سے آئے تھے رپورٹرز یہاں پہ, تونسیا سے آئے ہوئے تھے رپورٹرز, اور جو ہے دنیا کے مختلف ممالک سے آئے تھے, اور حتیٰ کہ وہ ممالک سے بھی آئے تھے جہاں پہ بالکل اصلاً جمہوری نظام ہی نہیں ہے, جیسا کہ سعودی عرب ہے یا قطر ہے. الجزیرہ کے جو ٹیلی ویژن ہے الجزیرہ کا, قطر کا ہے, وہاں کے نمائندے تھے, انہوں نے اعتراف کیا. جو عوام کا جوش دیکھ کر, عوام کا جو جوش و خروش دیکھ کر, عوام کا جذبات دیکھ کر, ان کو بھی یہ بات کا احساس ہوا کہ امریکہ جو ہے بالکل, حالانکہ کہنے سکتے ہیں چونکہ ان کے حکومت خود ان کے جو حکومتیں ہیں, ان کے جو مالک, ان کے ریجیمس, ان کی پالیسی نہیں ہے کہ امریکہ کو تنقید کریں, انتخاب کریں. حالانکہ وہ بھی خود جانتے ہیں کہ امریکہ جو ہے غلطی پہ ہے, لیکن چونکہ امریکہ کے اس کا تابع نہیں کہہ سکتے, لیکن انہوں نے جو ہے اپنے وہ دبے دبے الفاظ میں اعتراف کیا کہ وہ آخر جو ان کو تعجب ہوا. پہلے تو سمجھے نہیں تھے کہ جو اتنے عوام آئیں گے نکل کے انتخابات کے لیے امریکہ کے پروپورنے کی بنا پر, لیکن جب آ کے دیکھے کہ صفوف, جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا گفتگو کے اوائل میں, یعنی جو 5 گھنٹے جو ہے توسیع کی گئی, ایکسٹینڈ کیا گیا وقت کو, جو عوام کا اتنا جذبہ تھا, اتنا ڈیمانڈ تھا کہ جو ڈیڈ لائن جو مقرر کی گئی تھی 8 بجے, اس کو ہٹانا پڑا, 8 سے 10 ہوئی, 10 سے 11 ہوئی, 11 سے 12 ہوئی, تاکہ لوگوں کو موقع ملے آ کے جو ہے ووٹ ڈالنے. اتنا رش تھا, اتنا ہجوم تھا. تو یہ سب جو ہیں آنکھیں کھل گئیں ان کی, جو خاص طور پہ عرب ممالک سے جو رپورٹرز وغیرہ آئے تھے, حتیٰ کہ جو ہے امریکہ سے ہٹ کر کچھ یورپین کنٹریز کے جو بعض رپورٹرز تھے, اٹلی کے تھے, اسپین کے تھے اور دوسری جگہوں تھے, انہوں نے اپنے اپنے زبان میں اعتراض کیا کہ وہ آخر اس نظام کو عوام کی جو ہے بھرپور تائید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو بھی کر رہا ہے امریکہ جو ہے بالکل غلطی پہ ہے, اور امریکہ جب بھی اس قسم کے جذبے پہ غالب نہیں آ سکتا. جبکہ عوام میں جو ہے اتنا شعور ہے تو اس قسم کے جو ہے شعور رکھنے والے افراد پر اس ملک پہ امریکہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا. اور امریکہ کو جو ہے دھمکیاں دینا, ایک تو پروپیگنڈا اپنی جگہ تھا, جو ہے سینکشن لگانا, ایسے سینکشن کے جو یونائٹڈ, پہلے تو یونائٹڈ نیشنز کو امریکہ اپنا پٹھو بنا چکا ہے, حالانکہ یونائٹڈ نیشنز کو بھی کوئی حق ہی نہیں تھا کہ ایران پہ سینکشن جو ہے عائد کریں, لیکن جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کو ایکسپلوئٹ کرتا ہوا سینکشنز لگایا ایران پہ. اچھا, اس سے ہٹ کر بھی جو یونائٹڈ نیشنز جو چیزیں نہیں مانا, ایکسٹرا جو جوڈیشل سینکشنز ہیں وہ لگا کے دوسرے ممالک کو جو ہے دباؤ میں لا رہا ہے کہ جو ہے ایران سے تعلقات نہ رکھیں. اب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بالکل کھلم کھلی غلطی پہ ہے, یعنی حقیقت سے ریالٹی بھی منحرف ہو چکا ہے, نہ صرف ایران کے بارے میں دوسرے ممالک کے بارے میں. اب آپ دیکھیے بحرین میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ امریکہ نہیں جانتا, لیکن وہاں بالکل امریکہ جو ہے چشم پوشی کر چکا ہے. سعودی عرب میں جو ہو رہا ہے خطیف میں, عوامیہ میں, زہران میں, یہ ممالک میں شرقی مشرقی علاقے ہیں, امریکہ بالکل چشموشی کیا ہے. لیکن جو ہے چونکہ سیریا کا جو نظام ہے, سیریا کی جو حکومت ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے, وہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے ہر قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے, تو وہ جو ہے ایران کے خلاف بھی وہی ہو رہا ہے. لیکن امریکہ جو ہے سوائے ناکامی کے اس کو کوئی نصیب ہی نہیں ہوا.
بہت بہت شکریہ شہباز صاحب, بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم قمر آغا اور ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحبان کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال امریکہ جمہوریت کا حامی کبھی نہیں رہا ہے, نہ اپنے یہاں اور نہ ہی دوسرے ملکوں میں, خاص طور پر مشرق وسطی میں وہ جمہوریت قتل نہیں چاہتا ہے. اور موجودہ حالات میں ایرانی عوام سے جو بار بار اس کی اپیل تھی کہ انتخابات میں حصہ نہ لیں, اس کی ایک وجہ اس کا یہ خوف بھی ہے کہ ایران میں جمہوریت کے استحکام, فروغ, دوام, یہ خطے میں جو اسلامی موومنٹ چل رہی ہے, اسلامی بیداری کی تحریک, اس کو اور زیادہ مہمیز کرے گی. اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
خدا حافظ.